ओम शांति। गुड मॉर्निंग। भाई जवाब ही नहीं, कोई रिस्पांस। कैसे आप सभी? खुशी में? कल सारा दिन खुशी का मनाया? कल का स्पिरिचुअल इंजेक्शन क्या था? आप रिवाइज करें। मैं भगवान का बच्चा हूँ, खुशी मेरा खजाना है, मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना है। तो किया आप सभी ने उसका अभ्यास? हाथ उठाओ जिन जिन्होंने किया तुम्हारा। अरे वाह, ये तो पूरी क्लास पास है, बहुत बढ़िया। आज तक इतने हाथ तो कहीं उठे ही नहीं। भी जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए, बहुत बढ़िया, ये तो पूरी क्लास ही पास है। हाँ, ऐसे अगर आप करते रहेंगे तो निश्चित ही अनुभूति के साथ साथ परिवर्तन भी आपके जीवन में आएगा। अब हम आज से इस शिविर का एडवांस कोर्स का, आप सभी अपने साथ कॉपी पेन लाए हैं? लाए हैं सभी? अच्छा, तो सभी अपनी कॉपीज में डाल लें लेसन वन, स्वयं की खोज। इस चैप्टर में हम स्वयं की खोज करेंगे कि मैं कौन हूं, स्वयं को पहचानेंगे। आज यदि हम आपसे आपका परिचय पूछें, इंट्रोडक्शन, तो उस परिचय में व्यक्ति क्या बताता है कि भाई मेरा नाम ये है, ये पोस्ट पोजीशन, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि आदि, यहाँ पर मैं रहता हूँ, ये एजुकेशन है। पर आप ही बताइए कि ये नाम, पोस्ट, पोजीशन, क्या केवल यही आपका परिचय है? ये परिचय तो किसको बिलोंग करता है? शरीर को, कि भाई ये नाम है, फलानी डिग्री है। परंतु क्या आप शरीर हैं? देखिए, शरीर के लिए तो क्या कहते कि ये पंच तत्वों से बना हड्डी मांस का एक पुतला है, और एक दिन वापस प्रकृति के तत्व में विलीन हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि जब मैं शरीर नहीं हूं तो वास्तव में मैं कौन हूं? आज देखिए, हम सागर की गहराई तक जाना चाहते हैं, आकाश की ऊंचाई को छूना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि अब चंद्रमा पर भी प्लॉट की बुकिंग शुरू हो गई है। तो दूर दूर तक हम पहुंच गए, पर मैं कौन हूं इस विषय में हम नहीं जानते। तो चलिए, इस चैप्टर के अंदर हम स्वयं की पहचान के द्वारा अपनी शक्तियों को जागृत करेंगे, जो कि मनुष्य को अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हमें अपनी शक्तियों को पहचानना है। जिसने भी अपनी शक्तियों को पहचाना और काम में लगाया तो वो महान बन गया। जब हमारी शक्तियां जागृत हो जाती है तो कोई भी बात हमें बोझ नहीं लगती, हर बात खेल लगने लगती है। तो हमारा जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी, वो एक आइस बर्ग की तरह है, बर्फ की शिला। देखा होगा आप सबने कि जो बर्फ की शिला है उसका अधिकतर भाग पानी के अंदर ही होता है और केवल थोड़ा सा हिस्सा ऊपर दिखता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व का भी मेजॉरिटी भाग अर्थात हमारी विशेषताएं, शक्तियां, ये सब हमारे भीतर छुपी हुई है और हम अपने बारे में केवल 10-12% ही जानते हैं। फिर भी हम क्या कहते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं अपने को, मेरा स्वभाव ऐसे ही है, हम नहीं बदलने वाले, कहते हैं ना। देखिए इस पर मुझे एक हथौड़े और चाबी का प्रसंग याद आता है कि एक बार हथौड़े और चाबी में एक बहुत सुंदर चर्चा चलती है। हथौड़ा चाबी को कहता है कि ए चाबी, तू और मैं तो एक ही बिरादरी के हैं, तू और मैं तो एक ही बिरादरी के हैं। तुझसे ये ताला खुल गया और मैं बार बार उस पे वार कर रहा हूँ और मुझसे नहीं खुल रहा है। तो देखिए चाबी कितना सुंदर जवाब देती है। चाबी कहती है कि हथौड़े, मैं ताले के भीतर गई, मैं ताले के भीतर गई, उसे घुमाया और वो खुल गया और तुम बाहर से ही उसको वार कर रहे थे। तो यदि आप भी अपनी जीवन की गुत्थियों को सुलझाना चाहते हैं, चिर स्थाई आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप चले स्वयं के भीतर की ओर, ये जानने कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तो चलिए आज हम चलेंगे स्वयं के भीतर की ओर। बताया ना कि लोग पूछते कौन है तो नाम पोस्ट फट से बता देते, पर ये तो सब शरीर को बिलोंग करता है और शरीर तो मैं हूँ ही नहीं, वो तो पंच तत्वों से बना है। इस पर मुझे एक और बात याद आती है कि एक व्यक्ति है, वो ध्यान लगा रहा होता है, मेडिटेशन करता है, तो एक राहगीर उससे पास से गुजरता और वो उससे पूछता राहगीर कि भाई जो लोग मेडिटेशन करते हैं और जो नहीं करते उनमें क्या अंतर है। तो जो ध्यान लगा रहा होता है, मेडिटेशन करता, वो उस राहगीर को बोलता कि भाई तू थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा, तेरे को अपने आप समझ आ जाएगा। तो अब क्या हुआ कि कुछ देर बाद वहां भूकंप आया, तूफान आया, हलचल मची, सब भागे। तो ये जो राहगीर था ये भी उठ के भागने लगा, पर इसने देखा कि जो मेडिटेशन कर रहा है वो तो बैठे ही है, वो तो भाग ही नहीं रहा है। तो उसने सोचा कि इसको कुछ नहीं हो रहा है तो मैं भी बैठ जाता हूँ। अब क्या हुआ कि कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया, हलचल शांत हो गई। तो फिर उस राहगीर ने उससे पूछा जो मेडिटेशन कर रहा था कि भाई भूकंप आया, तूफान आया, सब भागे, पर आप क्यों नहीं भागे। तो उसने कहा कि भागा मैं भी था, भागा मैं भी था, पर मैं भागा भीतर की ओर और सब भागे बाहर की ओर। तो जब भी कोई परिस्थिति आए तो बाहर की ओर सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय आप चले अपने भीतर की ओर। तो चलिए आज हम चलेंगे अपने भीतर की ओर, स्वयं को खोज करने कि वास्तव में मैं कौन हूँ। यहाँ पर बताया है कि ये शरीर पंच तत्वों से बना हड्डी मांस का एक पुतला है और मैं इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, एक सोल। सोल माना एक ऐसी शक्ति जो इस पूरे शरीर को चला रही है, एक एनर्जी, एक पावर। देखिए सारे दिन में हम दो शब्द बहुत यूज करते, एक मैं और दूसरा मेरा। तो बताइए मैं शब्द किसके लिए बोलते हैं? किसके लिए बोलते होंगे, किसके लिए बोलते बताइए? अब शेयर कीजिए, दो दिन हो गए ना, अब ओपन हो जाए, थोड़ा शेयर करिए। ये आपका परिवार ही है, शेयर करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, मैं शब्द किसके लिए बोलते? अपने लिए माना कौन, बॉडी। तो ऐसा बोलते हैं क्या कि मैं कान दुख रहा हूँ, मैं सिर दुख रहा हूँ? नहीं, जो शरीर की कर्म इंद्रिया है, बॉडी के पार्ट्स, उसके लिए बोलते हैं मेरा, मेरा कान, मेरा मुख, मेरी आंख। और मैं शब्द बोलते हैं आत्मा के लिए, जो आपने कहा सेल्फ के लिए। तो सेल्फ माना कौन? अभी तक शरीर ही समझते, शरीर समझकर ही कर्म करते, तो यही तनाव का बीज है। और अगर ये समझे कि मैं आत्मा हूँ और इस शरीर को चला रही हूँ, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है आत्मा, उसमें और शरीर में क्या अंतर है। अभी हम आपको बोर्ड पे बताएंगे और लास्ट में आज आपको बहुत सुंदर मेडिटेशन के द्वारा आत्म अनुभूति भी कराएंगे। अभी हम बोर्ड पे समझते कि बॉडी और सोल में क्या अंतर है। मिक्स कर दिया है इसलिए डिस्टरबेंस होता है। बॉडी और सोल, पहला अंतर बता दिया कि शरीर की कर्म इंद्रियों के लिए कहते मेरा और मैं आत्मा। ये अलग हो गया है कि लोग नहीं जानते इसलिए अभिमान के वश कह देते मैं ऐसा करूंगा। वो अभिमान अलग चीज है, पर यथार्थ रूप में मैं माना एक आत्मा, एक शक्ति जो इस पूरे शरीर को चला रही है। अच्छा, और क्या अंतर होगा बताइए बॉडी और सोल में? शरीर है विनाशी, इसका विनाश हो जाता है, और मैं आत्मा कैसी हूँ? अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता। अगर ये अंतर समझ लिया तो जो फियर ऑफ डेथ है, मृत्यु का भय, वो नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ। तो आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी। और क्या अंतर होगा बताइए, करेंगे शेयर? हाँ, कि शरीर दिखता है और आत्मा दिखती नहीं है, पर उसको हम अनुभव कर सकते हैं। और अंतर कि शरीर है जड़, नॉन लिविंग, जैसे टेबल चेयर ये होता है ना, और इस जड़ शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? मैं चैतन्य आत्मा। देखिए यहाँ बताया कि जब इस जड़ शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश हो जाती है, तब ये शरीर बोलता है, देखता है, सुनता है। और जैसे ही शरीर से चैतन्य आत्मा निकल गई, तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, और ही इसको जाकर जला देते हैं। या ऐसा समझ लें कि जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जैसे ये माइक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, या अपने घरों में भी कंप्यूटर, गीजर, फ्रिज, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, पर इन इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाली शक्ति कौन है? किससे चलता है वो? बिजली, इलेक्ट्रिक। पर दिखने में इलेक्ट्रिक नहीं आती, दिखने में इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो ऐसे ही ये शरीर केवल एक कर्म करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। ये समझा? क्लियर? तो मैं कौन हूँ? शरीर नहीं, पर कौन? वो शक्ति, एनर्जी, आत्मा जो इस शरीर को चला रही है। तो शरीर है इंस्ट्रूमेंट और आत्मा चलाने वाली इसको शक्ति, एनर्जी। शरीर जड़, आत्मा चैतन्य। और सबसे बड़ा अंतर कि शरीर ऐसा आप कह सकते हैं कि ये एक बॉक्स है, डिब्बी, और इसमें मैं आत्मा चमकता हीरा, डायमंड। अब हम आपको सबसे बड़ा अंतर बताते, और अगर वो अंतर समझ लिया तो आज के बाद कभी भी आपको तनाव नहीं होगा, क्योंकि वही सारी गड़बड़ कर दी हमने। इसको आप ध्यान से समझें, जो सबसे बड़ा अंतर। पर उसके पहले आप बताएं कि अब सब कौन बैठे हैं यहाँ पर? दिखने में लंबा चौड़ा शरीर, पर कौन बैठे हैं यहाँ पर? सभी कौन बैठे? आत्मा, जो इस शरीर को चला रही है, एक शक्ति, एक एनर्जी, जो इस शरीर के द्वारा सुन रही है, बोल रहे हैं, देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा अंतर कि मैं आत्मा इस शरीर की कर्म इंद्रियों की राजा हूं, मालिक, और ये कर्म इंद्रिया, आंख, मुख, हाथ, कान, ये सब मुझ आत्मा राजा की प्रजा है, सर्वेंट। मैं आत्मा राजा, मास्टर, और ये कर्म इंद्रिया मेरी प्रजा, गुलाम, सर्वेंट। पर आज क्या हो गया है? पूरा तख्ते ही पलट गया। राज्य किसका आ गया? इस गुलाम ने अपना राज्य कर लिया, इसलिए सारी गड़बड़ हो गई। आप चेक करें कि आज क्या मुझ आत्मा राजा का अपनी कर्मेंद्रियों पर, कर्मचारियों पर कंट्रोल है? है किसी का? चेक करें कि क्या मुझ आत्मा राजा का इन आंख रूपी कर्मचारी पर کنٹرول ہے؟ پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، پھر بھی آنکھیں کس کو دیکھتی ہیں؟ غلط چیز کو، تو کہاں ہے کنٹرول؟ اچھا، اور آگے بڑھے، چیک کریں کہ کیا مجھ آتما راجا کا اپنی کان روپی کرمچاری پر کنٹرول ہے؟ ہے کسی کا؟ کان کس میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں؟ کسی کی پر چنتن نندا چل رہی ہوتی ہے تو وہاں جا کر ہم رس لینے لگتے ہیں، اور کہیں اچھی بات چلتی ہے تو کہتے ہیں بھائی ابھی سمے نہیں ہے، اور مانو یہاں سے باہر نکلے کسی کا نندا چل رہی ہے، پر چنتن چل رہا ہے تو ہم بھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں سننے. اچھا، اور آگے چیک کریں کہ کیا مجھ آتما راجا کا اپنی مکھ روپی کرمچاری پر کنٹرول ہے؟ ہے کسی کا؟ چھوٹی چھوٹی بات میں ہم کرودھت ہو جاتے، جہاں نہیں بولنا ہوتا ہے وہاں بھی بولتے. آپ دیکھیں اس سنسار کے اندر سارا کھیل ہی کس کا ہے؟ بول گئی تو کھیل ہے، بول گئی تو جادو ہے. اس ڈھائی انچ کی زبان کے لیے کہتے ہیں کہ اس ڈھائی انچ کی زبان میں ہڈیاں تو نہیں ہوتی، پر چاہے تو کسی کی ہڈی توڑ سکتی ہے. پر آپ ہی بتائیے کہ کیا میٹھے بول بولنے میں ہمارا کچھ جاتا ہے، کچھ خرچ ہوتا ہے؟ پھر کیوں نہیں بول پاتے ہم؟ دیکھیے، میٹھے بول بول کر آپ کسی کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں، کسی سے بھی اپنے سمبندھ سدھار سکتے ہیں. تو آج آپ کا سب سے پہلا ہوم ورک، ابھی نوٹ نہیں کرنا، ہم لاسٹ میں لکھوائیں گے، آج دو ہوم ورک دیں گے. سب سے پہلا کہ آج آپ آتما پہلے تو یہ ریلائز کریں کہ میں ان کرمیندریوں کی راجا ہوں، مالک. راجا کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کو آگیا دینا. راجا کیا کرتا ہے؟ مالک کہ سب کو آگیا دے دیتا ہے، تم ایسا کرو، تم ایسا کرو. راجا غلام کے وشیبوت نہیں ہوتا ہے. تو آج آتما راجا بن کر اس مکھ روپی کرمیندری کو، کرمچاری کو آگیا دے دے کہ ہے مکھ، آج تجھے میٹھے بول ہی بولنا ہے. دے سکتے ہیں سر؟ تو آج کا سب سے پہلا ہوم ورک کہ جو بھی آپ کے سامنے آئے، سب سے آج کیسے بول بولنا؟ میٹھے بول. کون کون کریں گے ہاتھ اٹھا کر؟ اچھا، بہت بڑھیا، ہاتھ میں سب کرتے ہیں، بہت اچھا. اب دیکھنا سارا دن. اور مان لیجئے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، نہیں نکل رہے میٹھے بول، تو مکھ کو کہنا کہ ہے مکھ، تو کم سے کم چپ تو رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی سب آتما راجا مکھ کو آگیا دے دو آج کہ ہے مکھ، آج تجھے میٹھے بول ہی بولنا ہے. اور مانو سارے دن میں ایسی کوئی پرستھتی آئی کہ کرودھ آیا، غصہ آیا، تو ایسا نہیں کرنا، ارے چپ چپ تجھے میٹھے بول بولنا ہے، واپس آتما راجا بن کر مکھ کو آگیا دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ جتنی بار اس کو آگیا دیں گے وہ آپ کی سنتا جائے گا. تو یہ آپ کا سب سے پہلا ہوم ورک. تو یہ آج ریلائز کریں سب سے پہلے کہ میں شریر نہیں، پر اس شریر کو چلانے والی ایک چیتنیہ شکتی آتما ہوں، جو مکھ دوارا بولتی ہوں، کانوں دوارا سنتی ہوں. اور میں آتما ان ساری کرمیندریوں کی مالک ہوں، راجا ہوں. ये सारी कर्मेंद्रियां मेरे वश है। कोई भी कर्मेंद्री मेरी आज्ञा के बिना काम नहीं कर सकती। कल हमसे कल भाई बहन मिले, बोले बहन जी कई हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, किसी के अंदर कोई व्यसन, तो अगर आप आत्मा मालिक बनकर आज्ञा दे देंगे तो फिर सारी कर्मेंद्रियां आपकी बात सुनने लगेगी। तो आज आज्ञा दे दे की मीठे बोल ही बोलना है, और न केवल मुख को बल्कि सब कर्मेंद्रियों को आज्ञा दे। आंख को बोलो कि तू अच्छा देख, कान को बोलो कि तू अच्छा ही सुन, मुख को बोलो कि तू मीठा ही बोल। तो जब सबको आज्ञा दे दी कि देखना भी अच्छा, सुनना भी अच्छा, बोलना भी अच्छा, तो सारा जीवन ही कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए सारा खेल ही बोल का है। एक बोल के कारण इतनी लंबी चौड़ी महाभारत बनी, ठीक है? तो यदि आप अपनी जीवन की यात्रा सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहते हो तो आप मीठे बोल बोलना अपना स्वभाव बना लो। अब हम चलते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है। देखिए शरीर तो लंबा चौड़ा दिखने में आता है, आत्मा दिखती नहीं है, पर उसकी अनुभूति हम कर सकते हैं। और ऐसी शक्ति है जो इस पूरे शरीर को चला रही है। तो क्या स्वरूप है हम आपको बताते, फॉर्म ऑफ सोल, कि जिस तरह आकाश में सितारे चमकते हैं, मैं आत्मा भी ठीक वैसा ही एक चमकता सितारा हूँ। सितारा तो फिर भी दिखता है, आत्मा तो उससे भी छोटी। आप इमेजिन करो कि एकदम छोटी चमकती बिंदी, पर उसकी चमक कैसी है आत्मा की, हीरे से भी ज्यादा तेज। जैसे डायमंड होता है ना हीरा, प्रकाशवान। तो मैं जो आत्मा हूँ, जो शक्ति हूँ, उसका स्वरूप क्या है? आकाश में चमकते सितारे के समान एक बिल्कुल छोटी बिंदु, प्रकाश का पुंज, एकदम प्रकाश, और जिसकी चमक हीरे से भी ज्यादा तेज है। इसीलिए आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन भी है। अभी हम बताते हैं, फिर लास्ट में अनुभव कराएंगे कैसे इसको करना बताएंगे। आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन समझने का है काफी कि मैं एक अति शक्तिशाली आत्मा हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, शक्ति पुंज हूँ। क्या हुआ इसका मीनिंग? कि आज सारा दिन आपको चलते फिरते इसी स्मृति में रहना है कि मैं तो हूँ ही एक आत्मा, एक प्रकाश का पुंज, और जिसका प्रकाश हीरे से भी ज्यादा तेज। तो मैं एक लाइट हूँ, प्रकाश, और शक्ति पुंज माना कि जिसकी शक्ति कैसी है, इतनी शक्तिशाली आत्मा हूँ मैं कि जिस शक्ति से ये सारा शरीर चल रहा है। तो खैर इस पर लास्ट में चर्चा करेंगे, पर अब हम चलते हैं कि मैं आत्मा जो राजा हूँ, चमकता सितारा, प्रकाश का पुंज, उसकी सीट कहाँ है, वो बॉडी में कहाँ बैठती है? क्योंकि राजा जब अपने सिंहासन पर बैठेगा, सीट पर बैठता है, तो ही उसका ऑर्डर माना जाता है। तो यहाँ बताया कि इन दोनों भ्रुकुटी के बीच मैं आत्मा मालिक बैठती हूँ। बिल्कुल आप अनुभव करें
अभी सब अनुभव करें कि मैं आत्मा बिंदु एक चमकता सितारा जिसकी चमक हीरे से भी ज्यादा तेज है।
ये देखिए कि जब भी तिलक देते हैं तो कहाँ देते? इधर, अर्थात पहले स्वयं को पहचानो, स्वयं की शक्तियों को पहचानो और फिर परमात्मा से शक्ति भरो।
और देखिए ज्ञान का तीसरा नेत्र भी यहाँ ही बताते और कहते हैं कि भ्रुकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। तो मैं आत्मा राजा दोनों भ्रुकुटी के बीच यहाँ बैठी हूँ। और साइंटिफिकली अगर समझे तो जो कल आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में आत्मा रहती है और वो यहाँ आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आत्मा की शक्तियाँ क्या है या हमारा जो व्यक्तित्व है जो पर्सनैलिटी वो कैसे बनता है। अब हम थोड़ा मनोविज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, इसको आप ध्यान से समझिए कि हमारे व्यक्तित्व का आधार क्या है, पर्सनैलिटी कैसे बनती। इसको हम एक ट्रायंगल के माध्यम से समझेंगे। देखिए आत्मा की शक्ति होती है मन, मन अर्थात हमारी सोचने की शक्ति, संकल्प करने की शक्ति, फिर है बुद्धि, इंटेलेक्ट, डिसीजन मेकिंग पावर, वर्ड्स, एक्शंस एंड माय पर्सनैलिटी। देखिए पर्सनैलिटी कैसे बनती कि सबसे पहले हमारे मन के अंदर कई प्रकार के विचार आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे विचार। उसके बाद बुद्धि के द्वारा हम उसका निर्णय करते हैं कि ये काम करना या नहीं करना। उसके बाद वो चीज हमारे वर्ड्स या एक्शंस में आती है कर्म के अंदर, और जो कर्म हम बार बार करते वो हमारे संस्कार या पर्सनैलिटी बन जाती है। तो पर्सनैलिटी का आधार क्या हुआ? मन। इस ट्रायंगल के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। यू आर वॉट यू थिंक। हमारे सोचने का तरीका ही हमें खुशी देता है और सोचने का तरीका ही हमें गम देता है। सोचने का तरीका ही हमें कमजोर बनाता है और सोचने का तरीका ही हमें शक्तिशाली बनाता है। देखिए हमारे सोचने का हम पर क्या प्रभाव होता है, इस पर हम आपको एक रियल बात सुनाते हैं। ध्यान से आप समझिए कि व्यक्ति के सोचने का क्या इफेक्ट होता है। ये रियल बात है कि एक बार एक कैदी को फांसी की सजा होने वाली थी, तो कुछ लोग उस पर रिसर्च करना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि सोचने का इफेक्ट क्या क्या होता है। तो उन लोगों ने उस कैदी को कहा कि देख भाई तुझे फांसी होने वाली है, तुझे मरना तो है ही। तो उन्होंने कहा कि हम तुझे फांसी की सजा न देकर एक जहरीले सांप के द्वारा कटवाएंगे और तू मर जाएगा। तो उसने भी सोचा ठीक है भाई, जाना तो है, सांप से कटे या फांसी पर चढ़ू। तो अब क्या हुआ कि जिस दिन उसको फांसी की सजा दी जाने वाली थी उसको वैसे ही कपड़ा आदि सब पहनाया, वहां पर ले गए और उसको कहा कि देख अब धीरे धीरे हम एक जहरीले सांप को तेरे पास छोड़ेंगे, वो आएगा तुझे काटेगा और तू मर जाएगा। तो उसको ऐसे ही बोला बस धीरे धीरे तेरे पास एक सांप आ रहा है, और उसको जोर से एक सुई चुभो दी और उसी क्षण वो व्यक्ति उसकी डेथ हो गई। क्योंकि उसने क्या सोचा कि मुझे सांप ने काटा। फिर बाद में उसका पोस्टमार्टम हुआ तो ये देखा गया कि जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर एक जहरीले सांप को काटने के बाद होते हैं, ठीक वही केमिकल रिएक्शंस उस व्यक्ति की बॉडी में हुए। क्योंकि उसने ऐसे ही सोचा। एक आपको इस पे जोक भी सुना देते हैं, अब ये रियल बात नहीं, ये जोक सुना रहे हैं कि एक बार एक कार्डियोलॉजिस्ट और उसकी वाइफ एक फिल्म देखने जाते हैं। तो उसकी वाइफ को फिल्म देखते देखते बीच में चेस्ट में पेन होता है, तो उसको लगता कि मुझे शायद अटैक आया। तो उसने सोचा, अरे हस्बैंड डॉक्टर ही था उसका, तो उसने सोचा शायद दवाई होगी। तो उसने अपने हस्बैंड से पूछा जो डॉक्टर था कि भाई मुझे शायद अटैक आया है, आपके पास दवाई है? तो जो उसका हस्बैंड था डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, उसने कहा हाँ ये दवाई है मेरे पास, तुम उसको 15-20 मिनट अपनी जबान के नीचे रखना, सब ठीक हो जाएगा। तो उसने ऐसे ही किया, 15-20 मिनट उस टेबलेट को अपनी जबान के नीचे रखा। फिर जो उसका हस्बैंड था डॉक्टर, उसने पूछा 10-15 मिनट बाद अपनी वाइफ से कि अब कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रही हो? तो वो बोली कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम क्वाइट ओके। तो वो जो डॉक्टर था उसने कहा लाओ वो तो मेरे कोट का बटन था। तो क्या कहने का भाव है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। इसलिए जोक सुनाए कि उसको फेथ था कि भाई डॉक्टर है तो दवाई होगी। ऐसी एक और रिसर्च हुई, अभी रिसर्च सुनाते हैं आपको, कि एक बार दो पेशेंट के माना ग्रुप बनाए, दो ग्रुप कैंसर पेशेंट के। डॉक्टर माना केवल देखना चाहते थे कि सोचने का इफेक्ट क्या क्या होता है। तो एक जो ग्रुप था कैंसर पेशेंट का, उसको कैंसर ठीक करने के लिए दवाइयां दी थी और उनको बोला कि भाई थोड़े समय आप ये दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा ग्रुप जो ग्रुप था कैंसर पेशेंट्स का, उनको दवाई नहीं, रंग बिरंगी विटामिन की टेबलेट दे दी। पर विटामिन की टेबलेट देने के साथ उन पेशेंट्स को ये कहा कि ये बिल्कुल लेटेस्ट दवाइयां निकली हैं, और उसके साथ ये भी उनको पॉजिटिव थॉट दिया कि नई प्रकार की दवाई, इससे जल्दी कैंसर ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर्स ने देखा कि जिन पेशेंट्स को केवल विटामिन की टेबलेट दी थी रंग बिरंगी, वो जल्दी ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि उस ग्रुप को उन्होंने दवाइयों के साथ ये पॉजिटिव विचार भी दिया कि अच्छी दवाई है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तो क्या समझाना चाहते हैं कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। संकल्प से ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। अगर कोई रोज ये सोचे कि मैं तो कमजोर हूँ, जहां मैं जाता वहीं हार जाता, कोई मेरा साथ नहीं देता, तो इस सोचने से सचमुच में आप कैसे बन जाएंगे? कमजोर। और सचमुच जहां आप जाएंगे वहीं हार जाएंगे। पर इसकी जगह रोज कोई ये अच्छा सोचे कि नहीं मैं तो भगवान का बच्चा हूँ और प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये सोचते सोचते आपका स्वरूप कैसा बन जाएगा? शक्तिशाली। और सचमुच में आपको सफलता मिलने लगेगी। तो हम आपको मन को शक्तिशाली बनाने के लिए दो मेथड्स बताते, ज्यादा बातें नहीं, दो मेथड। पर आप पाएंगे कि निश्चित ही आपका उससे मन शक्तिशाली बनेगा। अभ्यास करना आप उस मेथड का। सबसे पहला, कि मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आप अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव विचारों से करें। अपने दिन की शुरुआत ही सकारात्मक विचारों से करें। ये पहली मेथड, स्टार्ट योर डे विथ अ पॉजिटिव। आप देखिएगा कि सुबह उठते ही जो सबसे पहला संकल्प आपने किया, उस पहले संकल्प का प्रभाव सारी दिनचर्या पर क्या पड़ता है करके देखें। अभी क्या होता है, उठते ही हम सोचते हैं अरे कहां से आ गया इस धरती पर नहीं, आप अभ्यास करें, सभी अभ्यास करें कि सबसे पहला संकल्प आप कल से करें, जो स्पिरिचुअल इंजेक्शन दिया कि प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आप देखेंगे कि इस एक संकल्प के कारण आपको सारा दिन हर कदम पे सफलता मिलेगी, क्योंकि कहते हैं कि संकल्प ही बीज है। जैसे संकल्प हम सुबह के समय अपने मन में भरते हैं, वैसे ही सारा दिन चलता है। आप थोड़ा सा सवेरे जल्दी उठें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम दे दें, भर दे प्रोग्राम, जैसे अलार्म भरते हैं ना, तो जैसा प्रोग्राम दिया वैसे ही चलेगा। दूसरा क्या संकल्प भरे, दूसरा क्या दिया था आप सबको कल, कि खुशी मेरा खजाना है, मुझे खुश रहना ही है। तो आप देखेंगे कि अगर सबसे पहला संकल्प ही खुशी का है तो सारा दिन आपका खुशी का जाएगा। करके देखें कि मन को शक्तिशाली बनाने के लिए दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव विचारों से करें। क्या पॉजिटिव सोचें वो हमने आपको विचार भी बताए और आपको हम रोज देते जाएंगे। उठते ही चिंतन करें कि हुई प्रभु के वरदानों के नीचे, खुशी का खजाना मेरे साथ ही है। तो आप सारा दिन देखना कि सारा दिन आपका खुशी का। करेंगे सभी कि दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव, तो पहले संकल्प का प्रभाव सारा दिन पड़ता है। दूसरी बात, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ज्यादा नहीं सोचें, क्योंकि ज्यादा सोचने से मन की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, मन कमजोर हो जाता है। देखिए कुछ वर्ष पहले ही, एक आध साल पहले, हमने ऐसी एक शिविर के ग्रुप में एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, आपको सुनाते। हमने क्या किया कि 10-10 लोगों के 5 ग्रुप बना दिए थे एक एक्सपेरिमेंट के लिए, और उन सभी ग्रुप को ये होमवर्क दिया कि आज सारे दिन में अलग अलग टाइम पे 7 बार आप अपने आप से पूछिएगा कि क्या जो कुछ हम इस समय सोच रहे हैं उसकी हमें आवश्यकता है। तो मेजॉरिटी सभी ग्रुप्स का यही जवाब था कि जो कुछ हम उस समय सोच रहे थे उसकी हमें आवश्यकता नहीं थी। तो क्या कहने का भाव कि मनुष्य बहुत ज्यादा सोचता है और वो भी व्यर्थ। पर याद रखें कि जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतने ज्यादा विघ्न और परिस्थिति बढ़ती जाएगी। कभी कभी होता है ना कि होता कुछ नहीं, छोटी सी बात होती है, पर हम उसको सोच सोचकर विकराल समस्या का रूप दे देते। मान लीजिए छोटा सा उदाहरण कि बच्चा स्कूल से घर थोड़ी सी देरी से पहुंचा, तो मदर उतनी सी देर में क्या क्या सोचने लगती। पर याद रखें कि जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतने ज्यादा विघ्न और परिस्थिति बढ़ती जाएगी, और जितना कम सोचेंगे उतने विघ्न और परिस्थितियां कम होती जाएंगी। और आप ही बताइए कि सोच सोच कर जीना ये भी कोई जीना है? बताइए, जीवन में अगर निश्चिंतता ही नहीं है तो वो जीवन ही कैसा? भले ही एक सेकंड जियो लेकिन बादशाह बनकर जियो, भले ही एक सेकंड जियो लेकिन बादशाह बनकर जियो। और वैसे भी एक बात आप सभी से पूछती हूँ कि क्या आप सब सारे संसार के जनरल मैनेजर है क्या? किसी को भगवान ने पोस्ट दिए कि जनरल मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड दिए किसी को? तो फिर आप क्यों चिंतन करें? देखिए कितने आश्चर्य की बात है, कितना विचित्र खेल कि जो परमात्मा सारा संसार चलाता है, जो सारे संसार का जिम्मेवार है, वो तो निश्चिंत है और हम जो केवल निमित्त मात्र हैं, वो सोच सोच कर भारी है। तो ज्यादा सोचने से ही मन की शक्तियां नष्ट होती हैं। पर अब हम आपको बताते कि कौन सी बात आप याद रखें कि आपको ज्यादा विचार ज्यादा चिंतन नहीं चले। एक फॉर्मूला बताते, ये टेबलेट आप कह लो कि अगर ज्यादा किसी को चिंतन चलता है तो उसका फॉर्मूला है कि आप सोचो नॉट, नॉट माना कि आगे से ये काम नहीं करना। मानो कोई गलती हो गई तो उसको बार 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 हम सोचते रहते हैं, तो सोचो नॉट, उस गलती से शिक्षा ले लो और सोच लो कि नॉट माना नहीं, कि आगे से ये गलती नहीं करनी। सोचो नॉट और लगाओ डॉट, डॉट माना फुल स्टॉप, डॉट लगाते हैं ना बिंदु। सोचो नॉट और लगाओ डॉट बिंदु कि अब इस बात के बारे में मुझे सोचना भी नहीं है, फुल स्टॉप। हम आपको एक अभ्यास बताते कि कभी कभी होता है ना कि अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा व्यर्थ के विचार आते हैं, तो उस समय आप एक अभ्यास करें, आप केवल इस एक पॉजिटिव संकल्प में स्थित हो जाएं कि मैं आत्मा बिंदु हूं, चमकता सितारा। बस, तो जब आप इस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे कि मैं आत्मा बिंदु हूं, तो उस एक पॉजिटिव संकल्प से सारे व्यर्थ के विचार खत्म हो जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला हुआ? सोचो नॉट और लगाओ डॉट, डॉट माना फुल स्टॉप बिंदु, मैं आत्मा बिंदु कि अब इस बात के बारे में मुझे सोचना भी नहीं। दूसरा फॉर्मूला आपको बताते ज्यादा नहीं सोचने के लिए, इसको हम कहते एबीसीडी फॉर्मूला। एक हुआ सोचो नॉट लगाओ डॉट, दूसरा एबीसीडी। हम क्या करते हर बात पे सोचने लग जाते, पर हर बात जीवन में महत्वपूर्ण नहीं होती है। कुछ बात को आप जीवन के अंदर अवॉइड कर सकते हैं, ए माना अवॉइड, कि हर बात पर हर घटना पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, अवॉइड कर दो कि ये चीज मेरे काम की नहीं है, इसमें मुझे नहीं उलझना। व्यक्ति कभी कभी उलझ जाते हैं तो अवॉइड कर दो। कुछ बात को जीवन के अंदर बाईपास कर दो, बाईपास माना किनारे से निकल जाओ, बाईपास रोड बनती है ना, तो कुछ बात को अवॉइड कर दो कि इसमें मुझे नहीं उलझना, कुछ बात को बाईपास कर दो किनारे से निकल जाओ कि ये मेरे काम की नहीं, कुछ बात को जीवन में सी माना कैंसिल कर दो, कैंसिल, कुछ को अवॉइड, कुछ को बाईपास, कुछ को कैंसिल और डी माना डू योर मेन वर्क। डी से है डू योर मेन वर्क अर्थात कि जो आपका मुख्य काम है उस पे आप अपना समय लगाओ, शक्तियां लगाओ, और जो ऐसी वैसी बातें तो कुछ को अवॉइड कर दो, कुछ को बाईपास कर दो, कुछ को कैंसिल, एंड डू योर मेन बिजनेस, डू योर मेन वर्क। तो ये दो फॉर्मूले, दो कैप्सूल्स आपको बताए। पहला कि सोचो नॉट और लगाओ डॉट, और दूसरा एबीसीडी फॉर्मूला, याद रहेगा फॉर्मूले से, अवॉइड बाईपास कैंसिल एंड डू योर मेन वर्क। अब हम आपको आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन कैसे करना ये बता दें, और उसके बाद हम चलेंगे इस चार्ट की तरफ। सबको मिला चार्ट, पर उसके पहले हम आपको बताएं आज का होमवर्क। एक तो आप नोट कर लें, क्या होमवर्क था सबसे पहला, क्या करना है आज बताइए। मीठे बोल ही बोलना है, सारा दिन अटेंशन कि आत्मा राजा बनकर आज मुख को आज्ञा दे दे कि हे मुख, आज तुझे मीठे बोल ही बोलना है। अब हम चलते हैं कि आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन होमवर्क कैसे करना। आज का थोड़ा अलग तरह से है, हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे आपको। एक तो आपको बताया कि कल से उठते ही सबसे पहला संकल्प कौन सा करना, कि प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है और खुशी मेरा खजाना। और आप देखना कि एक संकल्प का प्रभाव सारा दिन क्या पड़ता है। अच्छा, ये स्पिरिचुअल इंजेक्शन सभी रोज लेकर जा रहे हैं, सभी को मिल रहा है बराबर, लेकर जाते हैं, ठीक है। अब आज का स्पिरिचुअल इंजेक्शन समझें आप पहले, फिर आप सभी को मिलेगा ये, क्योंकि थोड़ा सा आज गहराई का है। आज का इंजेक्शन है, मैं एक अति शक्तिशाली आत्मा हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, शक्ति पुंज हूँ। अब देखिए कैसे इसका अनुभव करना और कितनी बार डोज लेना आज का, क्या अनुभव करना आप आज सारा दिन चलते फिरते चलते फिरते। आपको आज स्मृति रहे कि मैं तो हूं ही एक आत्मा, एक प्रकाश का पुंज, एक शक्ति का पुंज, ये शरीर केवल कर्म करने के लिए मुझे मिला है। और आप आज हर एक घंटे में दो दो मिनट के लिए बैठना और आप अपने आत्मिक स्वरूप को देखना। नटशेल में हमने आपको अभी तक क्या बताया, स्वयं की क्या खोज की हमने, कि मैं कौन, इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली एक अजर अमर अविनाशी आत्मा, एक प्रकाश का पुंज। अब इसको अनुभव कैसे करना, ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपका सत्य स्वरूप है। देखो कोई भी आता है ना, पूछते हैं आप कौन, तो फट से हमको क्या आता है, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, पर ये सारे इंट्रोडक्शन लेवल तो किसके, शरीर के, ठीक है, वो परिचय आवश्यक है देने के लिए, ये हम नहीं कह रहे, पर वास्तव में अंदर में खुशी हो कि हम तो एक आत्मा है, ठीक है ना, मैं तो एक आत्मा हूँ। तो कैसे आप अनुभव करना आज आप इसको, कि आप एक दृश्य बनाएं कि जिस तरह आकाश में सितारे चमकते हैं, मैं भी ठीक वैसा ही एक छोटा सा बिंदु चमकता सितारा हूँ। आप अनुभव करें, और जिसकी चमक कैसी है, हीरे से भी ज्यादा तेज। देखिए यहाँ बताया, ये हीरा यहाँ बड़ा बनाया समझाने के लिए, ये लास्ट में चित्र वहाँ लगा देंगे आपको, पर अभी ऐसा कि ये हीरा आत्मा, बिल्कुल छोटा सा स्टार, प्रकाश का पुंज। और फिर अनुभव करें कि मुझ आत्मा बिंदु में से, प्रकाश पुंज में से अनंत शक्तियों का प्रकाश निकल रहा है, जैसे सितारे में से लाइट लाइट निकलती है ना, तो मैं आत्मा भी एक चमकता सितारा, अति शक्तिशाली आत्मा, और मुझसे शक्तियों का प्रकाश ही प्रकाश, शक्तियों की लाइट ही लाइट निकल रही है और वो शक्तियों की लाइट का कलर होता है सुनहरा लाल, गोल्डन रेड। इसलिए यहाँ बताया गोल्डन रेड कलर कि ये आत्मा चमक रही बीच में, हीरा एकदम स्टार और उसमें से शक्तियों का प्रकाश ही प्रकाश, सुनहरा लाल। जैसे नहीं सूरज होता है तो जब वो उदय होता है तो सूर्य तो है ही एक चमकता गोला और उसके आसपास भी लालिमा फैल जाती है, तो ऐसा दृश्य कि मैं आत्मा एक हीरा, बिल्कुल छोटा सा स्टार चमक और मुझसे फिर शक्तियों का प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है और वो प्रकाश सुनहरा लाल कलर। और फिर चिंतन करें कि मैं अति शक्तिशाली आत्मा हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, शक्ति पुंज हूँ। आया समझ में? कितनी बार करना आज? दिन में 7 बार, ज्यादा नहीं दे रहे आज का होमवर्क। 7 बार 5-5 मिनट के लिए आप बैठिएगा और इस दृश्य को अपने सामने अनुभव कीजिएगा कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, यही मेरा सत्य स्वरूप है, प्रकाश का पुंज, शक्ति का पुंज, चमकता सितारा और मुझसे शक्तियाँ ही शक्तियाँ, सुनहरे लाल कलर निकल रहा है। समझा सभी को? अभी हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराएंगे पर उसके पहले ये चार्ट कैसे भरना, ये चार्ट आज से लेकर पूरे 9 दिन तक आपको भरना है, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। कि एक तो जो स्पिरिचुअल इंजेक्शन दे रहे हैं वो आप करते चलें, दूसरा इस चार्ट को सिंसियरली भरें। हम बोर्ड पे भी समझा देते हैं कैसे इसको भरना, अब समझें पहले फिर आपको नोट करने का समय देंगे। देखिए चार्ट के अंदर सबसे ऊपर लिखा है स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति हेतु चार्ट, फिर लिखा है पहला कॉलम निश्चिंत जीवन जीने हेतु अनमोल रतन, वैल्यूबल जेम्स फॉर टेंशन फ्री लाइफ। तो उसमें आप देखिए ऐसे 9 कॉलम बने, इधर देखिए सभी है ना। तो रोज हम आपको अनमोल रतन देते जाएंगे कि आपको क्या चेक करना है, पहला दूसरा तीसरा। जैसे एग्जाम्पल आज आपको चेक करना है कि सबके प्रति वाणी में मधुरता रही, तो ये जो रतन है माना ये पॉइंट कि सबके प्रति वाणी में मधुरता, ये आपका लिखेंगे, ये जो फर्स्ट है अनमोल रतन वाले में। फिर रात को जब आप सोएं, चार्ट कब भरना, रात को जब आप सोएं तो ये जो प्रथम दिवस का कॉलम है लिखा है ना, पहला दिन प्रथम दिन, तो उसके अंदर आप लिखिएगा कि आज सारा दिन कैसा रहा। माना ये जो आपको पॉइंट दिया था मीठे बोल का, ये आपने बहुत अच्छा रहा आपका, 100% फॉलो करा या ठीक ठीक रहा या बिल्कुल कम रहा, समझ रहे ना। फिर आपको कल हम दूसरा पॉइंट देंगे चेकिंग का, तो वो आप कहाँ लिखेंगे, अनमोल रतन वाले कॉलम में दूसरा। फिर कल जब आप सोएंगे रात को सोने के पहले द्वितीय दिन के कॉलम में कल वाला पॉइंट भी लिखेंगे और आज का भी, पर आज हम आपको एक नहीं 3 पॉइंट देंगे चेकिंग के, क्योंकि 2 दिन के पहले के भी हैं कल और परसों का भी। तो जो पहला पॉइंट रहेगा वहाँ कहाँ भरेंगे, फर्स्ट कॉलम, दूसरा दूसरे कॉलम में, तीसरा तीसरे में। पर इन 3 पॉइंट का रिजल्ट कौन से कॉलम में भरेंगे, आज कौन सा दिन है, प्रथम दिन। समझा सभी ने? और कैसा करना, हम बाहर बोर्ड पे लगाएंगे कैसे भरना, कि मानो आपका चार्ट अच्छा रहा तो हम 3 मार्क्स बता देते हैं, आपको अपने मार्क्स देने हैं। कि आपका ठीक ठीक रहा तो आप 25 नंबर अपने को दे देना कि भाई आज का ठीक ठीक रहा, तो 25 आप मार्क्स लिख लीजिए। अच्छा रहा गुड तो 50, बहुत अच्छा रहा वेरी गुड रहा, देखो इतना है 100-100, माना ठीक ठीक रहा तो 25, गुड रहा आपका चार्ट तो 50, वेरी गुड रहा बहुत अच्छा तो 75।
बहुत अच्छा तो उसमें 100 नंबर, ऐसे मार्क्स देने 25, 50, 75 और 100।
अब मान लीजिए कोई परिस्थिति आई कि आपको क्रोध आया, तो अगर आपको याद आ जाता है उस समय, ऐसा नहीं कि भाई क्रोध आया, परिस्थिति आ गई तो हमारा चार्ट खराब हो गया, हम 0 नंबर दे, ऐसा नहीं। अगर याद आ जाता है कि भाई आज मीठे बोल बोलना है, और उस समय आप कर देते हैं कि भाई आत्मा मालिक बन के मुख को चुप करा देते, तो आप अपने को 100 नंबर दे देना, क्योंकि क्रोध हुआ नहीं, ठीक है ना। पर आप ध्यान रखना कि रोज आपका चार्ट का ग्राफ बढ़ता जाए, आज 50 नंबर है तो कल 75 होना चाहिए, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं कि खुश रखने के लिए सब में 100-100 नंबर दे दो, अपने ईमानदारी से भरना। चार पॉइंट्स हम आपको चेकिंग के लिखाते, पर उसके पहले दो परहेज। देखो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई भी देते हैं, पर कहते हैं कि भाई परहेज रखेंगे तो उस दवाई का इफेक्ट होगा। तो आप चार्ट के पीछे परहेज लिख लें कि पूरे 9 दिन तक किसको इस कोर्स का ज्यादा इफेक्ट होगा, उसके दो परहेज हैं। पहला परहेज कि पूरे 9 दिन तक आपको पर चिंतन नहीं करना, ये पहला परहेज, तो इस चार्ट का कोर्स का इफेक्ट होगा ज्यादा, पर चिंतन नहीं करना। दूसरा परहेज, पूरे ही 9 दिन तक टीवी नहीं देखना, ठीक है। क्योंकि देखिए कई लोग सोचते हैं कि टीवी देखकर सोएंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, पर ये रिसर्च हुई है कि जब से टीवी घर घर में आई है, नींद की बीमारी सबसे ज्यादा बढ़ी है, सबसे ज्यादा नींद की प्रॉब्लम। तो रिलैक्स नहीं होते, रिलैक्स होना है तो प्रभु के वरदानों के नीचे सो जाओ तो रिलैक्स हो जाएंगे। तो कौन कर सकते हैं परहेज, जरा टीवी का जरा हाथ उठाए, कौन कौन बात दो रहा, अभी तो सबने उठा दिया। चलो और ज्यादा है तो आपको केवल न्यूज सुनने की छुट्टी दे सकते, ठीक है ना, समाचार सुन सकते, पर ऐसा नहीं कि दिन भर ही न्यूज चैनल लगा के रखा है। तो ये परहेज है आपका, जितना आप करेंगे उसका फायदा होगा। अब आज आपको क्या क्या पॉइंट्स चेक करना है हम लिखवा देते हैं, फिर उसके बाद आज आत्म अनुभूति आपको कराएंगे। हाँ, उसके पहले हम बता दें कि कल का सेशन रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है कल का सेशन। कल हम आपको बताएंगे मनोबल कैसे बढ़ाएं, विल पावर बढ़ाने के लिए कल आपका सेशन है। और कल आपको स्पिरिचुअल इंजेक्शन के साथ एक स्पिरिचुअल टेबलेट भी दी जाएगी, जिसको नींद नहीं आती तो उसको कल एक टेबलेट भी देंगे नींद की, स्पिरिचुअल टेबलेट, वैसी वाली नहीं, वो वाली गोलियां तो बाजार में ही बहुत मिल जाती हैं, यहाँ सारी चीज आध्यात्मिक चलेगी, ठीक है ना। तो चार्ट का सबसे पहला पॉइंट कहाँ लिखेंगे सभी बताते जाए, इधर वैल्यूएबल जेम्स। पहले दिन का आप लिखें, सबके प्रति मन में शुभ भावना रखना, पहला पॉइंट चेकिंग का, सबके प्रति मन में शुभ भावना रखना। अब कितना आपने रखा वो रात को सोने के पहले भरना, कि 100 रही, 100% ओके रहा, सबके प्रति शुभ भावना रही, या थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हुआ, 25 मार्क्स देना, 50 देना, वो आप रात को भरना, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट चेकिंग का, कहाँ भरेंगे ये सेकंड, निश्चिंत जीवन वाले रतन में। दूसरा पॉइंट, हर परिस्थिति में खुश रहना, हर परिस्थिति में खुश रहना। जिसको नहीं समझ आए तो क्लास के बाद आप अलग से पूछ लीजिएगा, कोई भी आपको पर्सनल कोई बात हो, पूछना हो, कुछ नहीं समझ आता तो क्लास के बाद हम रुकते हैं यहाँ पर, आप पूछ सकते हैं। सेकंड पॉइंट, हर परिस्थिति में खुश रहना। अब मानो कोई दुख की परिस्थिति आई, आपकी खुशी गुम हुई, तो आप वो प्रतिज्ञा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना, अरे फिर क्यों खुशी गुम हो गई, चार्ट भरना है, ये करना, नहीं, उसकी जगह पॉजिटिव बात याद करना कि मैं हूं ही भगवान का बच्चा। अच्छा, तीसरा आज का चेकिंग का, सबके प्रति वाणी में मधुरता, सबके प्रति वाणी में मधुरता, मीठे बोल। तो ये तीनों पॉइंट्स
फर्स्ट डे के कॉलम में, प्रथम दिन के कॉलम में रात को सोते समय भरिएगा। जैसे हम आपको बोर्ड पे बता देते कैसे भरना, देखिए आपको कैसे चार्ट भरना है। यहाँ लिखा है प्रथम दिन, फिर द्वितीय, ऐसे दिन लिखें। यहाँ बढ़ते जाएंगे कॉलम, यहाँ लिखा है निश्चिंत जीवन जीने हेतु अनमोल रतन। फिर यहाँ नौ पॉइंट्स हैं, तो हमने आपको आज सबसे पहला पॉइंट दिया सबके प्रति मन में शुभ भावना, वो आपने लिख ली। दूसरे पॉइंट में लिखा हर परिस्थिति में खुश रहना। तीसरे पॉइंट में लिखा सबके प्रति वाणी में मधुरता। अब कैसे भरना इसको, ये तीन पॉइंट्स हो गए अलग अलग पॉइंट। रात को जब सोए तो ये जो प्रथम दिन का कॉलम है, आज फर्स्ट डे ना एडवांस कोर्स का, तो कैसे मार्क्स देना, जैसे सबके प्रति मन में शुभ भावना। अब मानो आपको ठीक ठीक रहा तो 50 नंबर यहाँ दे दो, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है हर परिस्थिति में खुश रहना। अब मानो आप 100% खुश रहे तो इस वाले में फर्स्ट डे के कॉलम में 100 नंबर इसके आगे लिख दो, ठीक है ना। सबके प्रति वाणी में मधुरता, पूरे आपने मीठे बोल बोले तो आप 100 नंबर यहाँ दे दीजिए, ठीक है। कल सेकेंड डे का आएगा तो चौथा पॉइंट आपको देंगे चेक करने का, तो वो पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे और उसका मार्क्स उस पॉइंट के आगे द्वितीय दिन के कॉलम में लिखेंगे। पर जो सेकेंड डे रहेगा तो उसमें केवल कल का ही पॉइंट नहीं चेक करना, ये तीनों पॉइंट्स भी आपको चेक करना है, चारों पॉइंट्स के मार्क्स भरने की शुभ भावना। द्वितीय दिन कितना ये बढ़ता जाए, मानो 60, ठीक है ना। खुश रहने का जितना भी आपका हो आप मार्क्स लिखते जाइएगा, पर ध्यान रहे कि चार्ट बढ़ता जाए, ग्राफ बढ़े। हाँ, और सिंसियरली भरना चार्ट। चलिए अब हम सभी डीप मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। उसके पहले कोई अनाउंसमेंट होगा, सभी अपनी कॉपी पेन बंद करें, हम गहरे आत्म अनुभूति की तरफ चलेंगे। चलते हैं आत्म अनुभूति की तरफ, आज हम अपने भीतर की यात्रा की तरफ चलेंगे। सभी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। चलिए हम चलते हैं भीतर की यात्रा तरफ। अपने आप को एक खुले मैदान में बैठा दें। रात का समय है, ऊपर आकाश की ओर देखें, अनुभव करें कि जिस तरह आकाश में सितारे चमकते हैं, मैं भी एक चमकता सितारा हूं। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। आत्मा प्रकाश पुंज, मैं प्रकाश पुंज, शक्ति पुंज आत्मा हूं। मैं आत्मा चमकता सितारा, अनंत प्रकाशवान, अपने दोनों भ्रुकुटी के बीच मस्तक पर चमक रहा हूं। अपने मस्तक पर
चमकता सितारा अनुभव करें। मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेकर अपना कर्म करती हूं। ये शरीर मुझे कर्म करने के लिए मिला है। मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूं, कानों का आधार लेकर सुनती हूं, मुख द्वारा बोलती हूं, मैं आत्मा इस शरीर की कर्म इंद्रियों की राजा हूं, मालिक। आत्मा राजा त्रिकुटि सिंहासन पर बैठा है। ये सभी कर्म इंद्रिया मेरे कर्मचारी हैं। कोई भी कर्म इंद्री मेरी आज्ञा के बिना काम नहीं कर सकती। मैं आत्मा राजा इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराता हूं। मैं इनके अधीन नहीं हूं। ये कर्मेंद्रिया मेरे सहयोगी हैं। आज मैंने मुख को आज्ञा दी है कि हे मुख, आज तुझे मीठे बोल ही बोलना है। तो बिल्कुल अनुभव करें कि ये शरीर केवल इंस्ट्रूमेंट मात्र है और इस शरीर से कर्म कराने वाली, इसको चलाने वाली मैं तो एक शक्ति हूं, एक प्रकाश पुंज, शक्ति पुंज आत्मा। देखते रहे अपने सत्य स्वरूप को, अनुभव करें कि जिस तरह आकाश में चमकते सितारे, मैं भी आत्मा एक चमकता हीरा, अनंत प्रकाशवान, शक्ति का भंडार, मुझसे आत्मा बिंदु में से अनंत शक्तियों की सुनहरा लाल प्रकाश निकल रहा है। आप इस शरीर को भूल केवल अपने सत्य स्वरूप का ही अनुभव करें कि शरीर है ही नहीं, वो पंच तत्व में विलीन हो गया और मैं केवल चमकता हीरा आत्मा। मुझसे शक्तियां ही शक्तियां, प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। आहा, यही मेरा सत्य स्वरूप है, यही मैं हूं, एक प्रकाश पुंज, अचर, अमर, अविनाशी आत्मा। मुझे कोई मार नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, मैं अकाल मूर्त आत्मा हूं। सभी मानसिक चिंताएं और परेशानियों से छूटने का साधन कि अपने को अपने सत्य स्वरूप में स्थित कर दें, कि मैं चमकता हीरा, शक्तियां ही शक्तियां मुझसे निकल रही है। आहा, आज तक मैं आत्मा स्वयं को जानने के लिए कहां कहां नहीं भटकी, कहां कहां नहीं खोजा, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं, परवार मेरा श्रेष्ठ भाग्य आज मुझे अपने सत्य स्वरूप की पहचान मिली, मुझे आत्मज्ञान मिला, मुझे अनुभव हुआ कि शरीर तो विनाशी है, हड्डी मांस का एक पुतला है, और मैं आत्मा तो एक अजर, अमर, अविनाशी शक्ति हूं। आहा, अपने सत्य स्वरूप का दर्शन कर मैं आनंदित हो रही हूं। देखते रहें, दर्शन करें अपने आत्म स्वरूप का, कि केवल चमकता सितारा हीरे के समान और मुझसे शक्तियों का प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। देखते रहे, खो जाए।
मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ।
सभी आंखें खोल लें और सभी इसी आत्मानुभूति में ही उठेंगे, कोई भी आपस में आवाज नहीं, और सारे दिन इसी खुशी में रहें कि मैं प्रकाश पुंज शक्ति पुंज आत्मा हूँ। ओम शांति।
आत्मा